ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञायते साम हृदयं जथैव जगाद जीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलिन संवृत सर्वकारकान् एकाएवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्री भगवान वाच हे ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भाषितां श्रुता वहिता सर्वे श्रेयो वस्याद्यथा सुरः जात दानव दैतेयै तावत् संधिर्विधीयतां काले नानुगृहीतैस्तै यावदो भव आत्मनः अरयोऽपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवहि गौरवे अहि मूषकवद्देवा यर्थस्य पदवीं गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बिताम् जस्य पीतस्य वै जन्तुः मृत्युग्रस्तो मरो भवेत् छित्त्वा क्षिरो दधौ सर्वा वीरुत्रीण लतौषधिः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकीम् सहायेन मया देवा निर्मथध्वमतन्द्रितः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा यूयं तदनुमोदध्वम् यदिच्छन्तसुरासुरा न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थः सान्त्वया जथा न भेतव्यम् कालकूटात् दिशात् जलधिसम्भवात् लोभो कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार विरिञ्चादिभिः श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा ईडिता प्रशंसित श्री भगवान तद उनके अभिप्राय को विज्ञाया जानकर तेषां उनके हृदयां जो हृदय में था जथा एवा जो था वह जगाद बोले जिमूत गभीरया बादल के समान गंभीर गिरा वाणी से बद्धांजलि सब देवता हाथ जोड़े हुए थे संवृत सर्ग कारकान और उनकी इंद्रियां भगवान की बात सुनने के लिए समाहित थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान की स्तुति किया उनके गुण गाए तब भगवान उनके हृदय में जो था उसके अनुसार यथार्थ बात बोले। देवता चाहते थे कि भगवान उनको कोई उपाय बताएं जिससे वे अपना ऐश्वर्य अपनी श्री सब कुछ पा जाए जो दैत्यों ने हर लिया था। तो भगवान उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर वैसे ही बोले। हृदयम का अर्थ है उनके हृदय में जो उचित बात हो रही थी जो चाहते थे उपाय उसी को भगवान ने बताया। ये भक्तों का स्वभाव होता है, वो भगवान से ये नहीं कहते हैं हमारा सब काम कर दीजिए। मेहनत करने के लिए भक्त तैयार रहते हैं, इतना ही कहे उपाय बताइए कि हम क्या करें, नहीं तो भगवान पर ही छोड़ देते, नहीं पूरा ही कर दीजिए आप ही। जैसे देवता लोग एक बार वृत्रासुर के वध के लिए भगवान से यहां तक कह दिए त्वाष्ट्रम जहि आप ही मार दीजिए उसको, उसका वध कर दीजिए। लेकिन भगवान वहां वध नहीं किए, उपाय बताए कि जाकर के दधीची मुनि की अस्थि की याचना कीजिए। तो यहां पर ब्रह्मा आदि सब भगवान के परम भक्त हैं देवतागण, तो भगवान से चाहते थे कि भगवान उपाय करें, हम अपन करेंगे मेहनत करेंगे। ये भगवान का भी स्वभाव है, ये भक्तों को निठल्लक बैठने देना नहीं चाहते हैं। ये अकेले रावण का वध नहीं कर सकते थे क्या, या पुल का निर्माण अकेले नहीं कर सकते थे, लेकिन सभी बानरों को लगाए मेहनत करो, जहां तहां से पहाड़ उठा उठा करके सेतु बंधन किए। ये भगवान का स्वभाव है भक्तों को एक्टिव रखने का, भक्त को लेजी बनाना नहीं चाहते बेकार। तो जो एक्टिव भक्त होते हैं लगे रहते हैं प्रचार आदि में वही ठीक है। तो देवता लोग चाहते थे कि भगवान कोई उपाय बताएं, तो भगवान वही बता रहे हैं। जब उस समय भगवान बोल रहे थे तो उनकी वाणी जिमूत के समान बादल के समान गंभीर थी। गंभीर के कई अर्थ होते हैं, गंभीर का ऊंचा अर्थ भी होता है। बादल जैसे गरजता है तो बिना लाउड स्पीकर के बहुत दूर में सुनाई पड़ता है। तो भगवान जब बोलते हैं तो उनकी वाणी बहुत व्यापक सुनाई पड़ती है और बहुत सुंदर वाणी, सरस वाणी। बादल जब गरजता है तो जैसे किसानों को प्रसन्नता होती है उस तरह से उनके भक्तों को प्रसन्नता होती है। तो श्री भगवान बोले, उस समय देवतागण बद्धांजलि अंजलि बांधे हुए थे और कोई कोई बात नहीं करता, सबकी जीभ समृद्ध थी। समृद्ध का अर्थ है संवरण किया हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, आंख से कहीं दूसरी तरफ नहीं देख रहा था, कान की वृत्ति भी भगवान की तरफ थी वो सुनने के लिए, सब भगवान को देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। समृत सर्व कारक, सारी कारक का अर्थ था इंद्रियां, जो कारक का अर्थ है जो काम करे, देखने सुनने चलने बोलने आदि का काम करे, उसको कारक कहते। तो सर्व कारकान सारी इंद्रियों को वे समाहित किए थे, यह नहीं कि भगवान बोलना भी चालू किया और उधर कोई थोड़ा आपस में बात करे थे मोबाइल चालू किया, ऐसा नहीं, सब समाहित थे, सब भगवान की बात सुनने के लिए। तो श्री भगवान जगाद बोले, तो अब सुखदेव गोस्वामी यह कह करके कि भगवान बोले, इसके बाद भी भगवान के विषय में कुछ विशेष बात बता रहे हैं। एक एवेश्वरस्तस्य तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वर, श्री भगवान सुरेश्वर हैं, देवताओं के स्वामी हैं, सुराणाम ईशः सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी हैं। जब देवताओं के स्वामी हैं तो अन्य के स्वामी क्यों नहीं, देवता तो सबके स्वामी हैं और देवताओं के स्वामी हैं भगवान विष्णु। तो भगवान एक एव अकेले ही देवताओं का कार्य करने में समर्थ थे पूरा रूप से। देवताओं का काम क्या था, सुर कार्य क्या था, सुर कार्य था दैत्यों को हराना और उनसे देवताओं का राज्य वापस लेना, देवताओं को सुख देना, यही भगवान का काम था, देवताओं का यही अभीष्ट था। इस कार्य में भगवान एक एव ईश्वर, ईश्वर का अर्थ समर्थ, अकेले ही सर्व समर्थ हैं सब कुछ करने में। वो आगे जो समुद्र मंथन होगा उसमें भगवान अकेले सब समर्थ हैं, और वास्तव में वे अकेले ही सब किए थे, और क्या कुछ लगने में था नहीं उसमें। एक एव ईश्वर, अकेले ही समर्थ हैं, लेकिन फिर भी विहर्तु काम, भगवान को विहार करने की इच्छा हो रही थी, लालसा हो रही थी कि हम कुछ विहार करें, लीला करें, खेल करें। और क्या विहार, समुद्र मथना देवी, समुद्र को मत थे, ये भगवान की इच्छा हो रही थी। समुद्र कितना बड़ा होता है और उसको मथने की इच्छा हो रही थी, विहर्तु काम, विहार करने की इच्छा हो रही थी। कैसे, तो समुद्र मथना दी, समुद्र का मंथन करने की, मंद्राचल लाने की, जानते थे कि ये सब मर जाएंगे लाने में, लेकिन विहार करना चाहते थे। जो भी आगे लीला हो रही है यही करने के लिए, विहार करने की कामना से भगवान देवताओं से इस तरह बोले। पूरा समाज के साथ, पूरे संसार के सबसे वरिष्ठ लोगों के साथ, देवताओं और दैत्यों के साथ भगवान ने क्रीड़ा करना चाहते थे, विहर्तु काम। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैकुंठ में भगवान बोर होते हैं इसीलिए थोड़ा स्पोर्ट, थोड़ा खेल खेलने की सोच रहे हैं। वो पूर्ण आनंद घन है, आनंद में रहते हैं, फिर भी भगवान परम रसिक हैं, तो नया नया खेल रचते रहते हैं, नई नई क्रीड़ा करते रहते हैं, विहार करने की इच्छा से और सबको सुख देने की इच्छा से ये लीला करना चाहते थे। इस अभिप्राय से उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हंत ब्रह्मन अहो शंभो, हे ब्रह्मा जी और हे शंभु। तो देवताओं के समुदाय में दो को स्पेशल संबोधन कर रहे हैं और बाकी लोगों को ग्रुप के अनुसार संबोधन करेंगे, दो का नाम रख रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी और हे शिव जी। और इसके बाद कहते हे देवा, अब सबको एक नहीं कर, हे देवा, मम भाषितम श्रुत आप सब सावधानी से मेरे भाषण को, मेरी बात को सुनिए। अवहिता, सब समाहित चित्त से एक एक बात पर ध्यान दीजिए, सुनिए। जिस उपाय से वह जुष्माकम श्रेयो भविष्यति, आपका श्रेय जिस उपाय से होगा, जिस बात से, वो बात मैं बता रहा हूं, सुनिए। और हे सुरा, कुछ भेद करके भगवान बता रहे हैं। एक बार संबोधन कर रहे हैं देवा, और इसके बाद संबोधन लास्ट में किए सुरा। हे देवताओं, हे सुरो, सुनो। अथवा देवा कह रहे हैं जो चमक रहे हैं, पूज्य हैं उनके लिए, और सुरा कहते हैं जो भक्त हैं, जो भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं। सब तो देवता तो ऐसे ही हैं, लेकिन सुरा असुरों से भेद कर रहे हैं। हे सुरों, सुनो मेरी बात। हे देवताओं और हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, आप हमारी बात बड़ी सावधानी से सुनिए, जिससे आपका श्रेय होगा। वो बात मैं बोल रहा हूं। जथा वह जुष्माकम श्रेय भविष्यति इति शेष, जिसे श्रेय होगा, आपका हित होगा, वो मैं बात बता रहा हूं। क्या है बात बता रहे हैं हित की? सबसे पहले भगवान कहते हैं जाइए, आप सब जाओ, और जा करके दैत्यों से कॉम्प्रोमाइज संधि करो। जात दानव दैते यावत संधिर विधीयता काले नानुगृहित जावद ओ भवयात्मनः। दैत्यों से जाकर के संधि कीजिए, एकदम विरुद्ध पक्ष जो शत्रु हैं स्वभाव से, उनके पास जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। अद्भुत उपाय बता रहे हैं, जा करके दैत्यों से संधि कीजिए, क्योंकि इस समय काल ने उनको गृहित किया, अनुग्रह किया है, काल उनके अनुकूल है, समय इस समय उनके अनुकूल चल रहा है, अथवा काव्य शुक्राचार्य जी उनके अनुकूल हैं। ये दोनों अर्थ है। काव्य न अनुग्रहित, शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य सब बहुत बलवान हो रहे हैं, या काल उनके अनुकूल है, तो उनके साथ जाकर के संधि कीजिए, प्रेम कीजिए। अब तक तो लड़ाई झगड़ा किए, हमेशा देवताओं में और दैत्यों में हमेशा लड़ाई ही चलती है, जब अवसर मिलता है बस लड़ाई, कभी दैत्यों की तरफ से, कभी देवताओं की तरफ से। जब देवताओं ने सुना, आपने पढ़ा होगा कि हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया, तो वो अवसर पा करके इंद्र ने सुना कि उसके मांस को चींटियां खा गई, हड्डी भर है, तो इधर उसके राजधानी पर इंद्र आक्रमण किए, बहुत मारपीट किए चीना झपटी और लोगों से, और उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिए। देवताओं को जब अवसर मिलता है तो असुरों पर अटैक करते हैं, और असुरों को तो हमेशा ये इसी ताक में रहते हैं कि कब देवताओं को मारा जाए। परपेचुअल झगड़ा है, पर ऐसे विपक्ष से भगवान मैत्री करने के लिए कह रहे हैं, जाइए और मैत्री कीजिए। कब तक करेंगे? जब तक आपके समृद्धि का समय नहीं आ जाता है। जब आपकी समृद्धि हो जाएगी, आप लोग ठीक हो जाए, उस समय लड़िए खूब, कोई बात नहीं। भगवान ये करे, करना तो वास्तव में विग्रह ही है, युद्ध ही करना है, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं, सीमित डेट दे रहे हैं, अवधि, तभी तक संधि कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा के लिए मेल कर लीजिए। चक्रवर्ती बाजी अर्थ करते, जब तक आपके विकास का समय नहीं आ जाता है, तब तक मेल कीजिए, और जब आप विकसित हो जाएंगे तो इसके बाद उनके साथ युद्ध करते रहिए, क्योंकि देवता तैयार नहीं थे, देवता तैयार नहीं हो रहे थे कि हम जाकर के गिरे उनके आगे, अपने दुश्मन के सामने जाकर के गिरे। भगवान का केवल अपना काम साधने के लिए। जब देवता तैयार नहीं हुए, सुन रहे थे लेकिन सबकी नाक भौं सिकुड़ रही थी, क्या भगवान कह रहे हैं, या कह दे कि इतना हमको मत गिराइए, तो भगवान ने कहा अरयोपी ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा यर्थस्य पदवीं गतये। हे देवताओं सुनो, अर्थस्य पदवीं गतये, अर्थस्य अपना प्रयोजन साधने के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सध रहा हो, बिना मेल किए शत्रु से नहीं सधे, तो उस समय शत्रु से भी मेल करना चाहिए, संधि करनी चाहिए। अरयोपि ही संधेया, शत्रु भी संधि करने योग्य होते हैं, यदि उनके संधि करने से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है तो समय पर झुक जाना चाहिए शत्रु के सामने। बड़ा कठिन पड़ रहा था देवताओं के लिए, तो भगवान ने कहा कि देखो शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे अहि मूसकवत, जैसे सर्प ने चूहा के साथ व्यवहार किया था, अहि मूसक न्याय कह। एक बार एक पिटारी में सर्प बंद हो गया था और उसमें पहले से ही एक चूहा गया था। पिटारी समझते ना, जिसमें सांप को फंसाता है सतेरा, उसमें बंद हो गया था। तो दोनों विपत्ति में थे, सांप भी विपत्ति में और चूहा भी विपत्ति में, लेकिन चूहा में एक कैपेसिटी थी, वो पिटारी में छेद कर सकता था, धीरे धीरे काटते काटते छेद कर सकता था। बहुत भूख लगी थी सांप को उस समय, लेकिन वो खाया नहीं मूस को, वो खाया नहीं, वो सोचा कि खा लूंगा तो फिर छेद नहीं हो पाएगा, तो उसे वो संधि किया, हे मूस भाई हम लोग बहुत भारी विपत्ति में हैं, आपको भगवान ने दांत दिया है, नख दिया है कुछ काटने के लिए, आप इसमें छेद कर सकते हैं, आप छेद कर देंगे तो आपकी कृपा से हम भी पार हो जाएंगे। तो तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पिटारी का जो मुख है, जहां कोमल अंश है काटने के लिए, वो थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है, कैसे काटूंगा। तो सर्प ने कहा कि आप मेरे सिर पर चढ़ जाए, फन पर, फन फैला लिया और कहा कि आप हमारे सिर पर चढ़ करके और उसको काटिए। तो बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो हमसे प्रेम कर रहा है, तो चढ़ा उसके फन पर और वहां से कुतरने लगा पिटारी को, काटा। तो अब ठीक हो गया, तो सांप कहा हमें निकलने दीजिए, पहले हम नापें कि हम निकल सकते हैं कि नहीं। और सांप ये सोच रहा था कि निकलूंगा और पिटारी के मुख पर ही, बिल के पास ही अपना मुंह फैला कर रहूंगा और चूहा निकलेगा तो उसको खा करके चल दूंगा। तो इसे काम करवाना है। याद रखिए कि श्री भगवान जनरल व्यवहार की बात नहीं बता रहे हैं, और यह है आप शत्रु के साथ जो व्यवहार होता वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान सभी को कपट सिखा रहे हैं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, पर शत्रु के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अरयोपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतये। यह अर्थस्य पदवीं गतये, अपना जब अर्थ सिद्ध हो जाए तो जैसे सर्प ने चूहे के साथ व्यवहार किया था वैसा व्यवहार करना चाहिए। समय पड़ने पर शत्रु को भी अपने मस्तक पर चढ़ाकर ले चलना चाहिए, और जब अनुकूल समय आ रहे तो उसको मिट्टी के घड़े की तरह पटक देना चाहिए, मार दे, खत्म हो। ये भगवान सिखा रहे हैं शत्रु के साथ, जनरल ऐसा नहीं सिखा रहे हैं कपट की सब समय कपट करो। भगवान संधि के लिए कह रहे हैं क्या काम है, यदि देवता लोग पूछे कि क्यों संधि करे, ये भगवान कौन उपाय बताने लगे। हम इनकी शरण में आए कि हमारा काम होना चाहिए, उपाय बताइए। तो लेकिन भगवान जो कहते हैं उसी में हित है। तो पूछे कि क्या उद्देश्य है, संधि करके क्या करेंगे, तो भगवान ने कहा अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम जस्य पीतस्य वै जंतो मृत्यु ग्रस्तो मरो भवेत। जस्य पीतस्य वै जंतु मृत्यु ग्रस्तो मरो भवेत। दैत्यों के साथ है संधि करके, कॉम्प्रोमाइज करके और अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करना है। अमृत क्या होता है, वो क्यों उत्पन्न किया जाए, तो भगवान ने कहा कि जस पीतस्य, जिसके पी लिए जाने पर मृत्यु से ग्रस्त जंतु भी जीव भी अमर हो जाता है, वो अमृत उत्पन्न करना है। तो इसके लिए तो पूरा यूनिवर्सल सोसाइटी बनाना है, बड़ा भारी इंटरप्राइज खड़ा करने के लिए भगवान कह रहे हैं। बड़ा काम है ना, यदि आज के युग में ये पता लग जाए कि कोई ऐसा पेय बन सकता है जिससे मृत्यु में पड़ा हुआ मनुष्य बहुत काल तक नहीं मरेगा, बहुत बहुत वर्षों तक निरोग रहेगा, तो सारी कंपनियां मिल करके बनाना चाहेंगी, है ना, कि तब अमृत बनाया जाए। अगर ऐसा पेय बना दिया जाए दुनिया में सबको अमर करने लगे, तो सब लोग मिल करके बनाए, तो बनाने की नौबत आए तो सब मिल जाएंगे। ये सब कचड़ा शराब और थर्ड क्लास के पेय बना बना कर दुनिया को पिला रहे हैं, कितना भारी उपाय करके, और केवल पैसा कमाने के लिए, और उससे लोग अमर नहीं बल्कि और मर हो रहे हैं, उनसे रोग बढ़ रहा है। हमने स्वामी रामदेव जी का प्रवचन सुना था टीवी पर, वो बता रहे थे कि जितने पेय जो बने हैं सब कचरा है वास्तव में, परंतु अब क्या कहा जा रहा है, इसको पीजिए, इसको पीने से आप फ्रेश रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, ये रहेगा, दिमाग तरोताजा रहेगा। अमृत उत्पन्न करने का मास्टर प्लान भगवान कर रहे हैं, और दैत्यों और देवताओं को मिला करके चाहते हैं कि ये उत्पन्न हो। वास्तव में भगवान परम सुहृद हैं, वे अपने श्रेष्ठ जीवों को ये सुविधा देना चाहते हैं। तो अमृत उत्पन्न होगा, बहुत सुंदर पेय जो अमर बना देगा, लेकिन अब उसको उत्पन्न करने में समुद्र को मथना पड़ेगा, बहुत भारी उद्योग है, और बिना कोऑपरेशन के, बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी के संभव नहीं, कोऑपरेशन चाहिए। कई जगह हम लोग देखते हैं कई कई कंपनियां हैं, तो किसी खास मशीन का कोई एक पार्ट बनाती है कोई कंपनी, कोई दूसरा बनाती है, कोई तीसरा बनाती है, तो इस तरह से आपस में कोऑपरेशन से एक मशीन बनाकर तैयार कर देते। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है, तो दोनों दल को मिल करके काम करना है, इसके लिए संधि करनी है। अमृतोत्पादने जत्न क्रियताम अविलंबितम, और एक क्रिया विशेषण भगवान दे रहे हैं कब काम करना है, अविलंबितम, इसमें देर नहीं करनी है, अविलंब यही काम करना है। और उस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में भगवान शिव भी हैं, और भगवान ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवता गंधर्व आदि सब लोग हैं और भगवान ने बता रहे हैं अमृत उत्पन्न करना है। अमृतोत्पादने यत्न क्रियता, भगवान ऐसे बोल रहे हैं किया जाए, करो ऐसा नहीं कर रहे हैं, किया जाए क्रियता अविलंबितम अचिर बिना देर के। जिसको पीने से, जिस अमृत को पीने से मृत्यु ग्रस्त व्यक्ति भी अमर हो जाता है। मृत्यु ग्रस्त है अपि अमर भवेत, मृत्यु ग्रस्त अमर हो जाता है। जैसे प्रत्येक प्राणी को इस संसार में मरना है, मृत्यु से ग्रस्त है, लेकिन यहां अमर होने का मतलब ये है कि बहुत बहुत वर्षों तक नहीं मरेगा और कोई रोग नहीं होगा। मरना तो निश्चित ही है, मृत्युग्रस्त का ये अर्थ, मृत्युग्रस्त है तो कैसे वो छूटेगा, और कहीं मृत्यु से कोई छूट सकता है अमृत पीने से? तो भगवान की भक्ति जब व्यक्ति करता है तब सु अमृत तत्वाय कल्पते, वो मृत्यु से शून्य होता है। तो भगवान के कहने का ये आशय सापेक्षिक शब्द है कि बहुत बहुत काल तक तो व्यक्ति नहीं मरेगा और स्वस्थ रहेगा, ऐसा अमृत उत्पन्न किया। तो उनके साथ संधि करना है, और उसके पहले समुद्र मंथन से पहले कुछ काम करना है, इसको बता रहे हैं। छिप्त्वा क्षीरौ दधौ सर्वा वीरुत्वेन लसौ लतौषधि, और जाकर के दैत्यों से संधि कीजिए, और आप सब मिल करके और दैत्य सब मिल करके जितनी भी औषधियां हैं, तो मेडिकल प्लांट्स हैं, और वीरुत वीरवाई और लता तृण घास, जितने भी अच्छे अच्छे घास हैं, घास और लता और वीरुत और औषधि, इनको समुद्र में डालिए। पहले दूध के समुद्र में, दूध में डालिए, और इसके बाद मंदराचल को मंथन बना करके तथा वासुकी नाग को रस्सी बना करके और मथिए। दूध, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूध में जब सुंदर औषधियां पत्ते घास आदि डाल करके उसको मथा जाता है, तो उसका जो विकार होता है वही है अमृत, अमृत का काम करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि औषधियां डाल करके सब तृण घास घास लता आदि और उसको मथिए। कैसे मथेंगे? तो मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदर पर्वत को मंथन बनाना है, मंथन दंड बनाना है। और रस्सी इतनी करोड़ों योजन की कहां से आएगी, और वो भी मोटा बहुत रस्सी चाहिए। वो वासुकी नाग, वासुकी नाग को बनाइए, रस्सी नेत्र नेति और मंदराचल पर्वत को मथनी, अश्वमथी। भगवान ने आश्वासन देने के लिए कहा, और कि मतलब ये कर पाएंगे, तो अकेले साहस नहीं हो रहा था, तो कहे सहाय न मया देवा निर्मम थध्वम अतंद्रिता, मैं रहूंगा मथने में, मैं स्वयं रहूंगा, मैं भी सहायता करूंगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मथूंगा, वास्तव में तो भगवान ही मथेंगे, लेकिन अपने भक्तों को कह रहे हैं मेरे मया सहाय न, मैं भी साथ में रहूंगा, मैं सहायता करूंगा, और मेरी सहायता पा करके आप लोग समुद्र का मंथन कीजिए। निर्मम थध्वम अतंद्रिता, सारी लापरवाही छोड़ करके, तंद्रा छोड़ करके और मथिए। तंद्रा का अर्थ होता है आलस्य, लापरवाही, ध्यान न देना, बिल्कुल सजग होकर के तत्परता के साथ उसको मथिए। सहाय न मया देवा निर्मम थध्वम अतंद्रिता, तो जब संधि करने के लिए भगवान कहे तो देवता लोग कहते हैं कि संधि में जब ये भी मथेंगे, दैत्य भी मथेंगे, वो भी अमृत पिएंगे, तो वो अमर हो जाएंगे। पहले से ही बलवान है, हम लोग को मारपीट करके बेदम किए हैं, तो अरे अमृत पिएंगे तो और बलवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो हम पर संकट ही आ जाएगा। तो भगवान ने कहा क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या, दैत्यों को केवल क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा मथने में। क्लेश भाजो, भाजो मैंने भागीदार, जो मथने में दुख है केवल उनको दुख मिलेगा, बाकी फल फल ग्रह जीवन में फल ग्रह जीवन फल ग्रह, लेकिन आप तुम लोग फल प्राप्त करोगे, वे लोग केवल मथने में क्लेश उठाएंगे, और फल मतलब अमृत, अमृत तुम लोगों को मिलेगा, चिंता मत करो, मैं रहूंगा ना। भगवान ये सब योजना बना रहे हैं, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्य जूयम फलक ग्रह, दैत्य सब क्लेश पाएंगे, बहुत दुख हुआ मथने में, बहुत मेहनत करना पड़ा, पहाड़ को घुमाना था, वासुकी नाग जो रस्सी बनी थी वो जब सांस ले रहे थे तो उससे सब झुलस रहे थे दैत्य लोग, मुंह के तरफ लगे थे, तो भगवान उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि दैत्यों को बहुत भारी क्लेश होगा, केवल क्लेश, और फल तुम लोगों को मिलेगा, अमृत तुम लोगों को मिलेगा, चिंता मत करो, मैं रहूंगा ना वहां, मैं साथ में रहूंगा। और भगवान ये सब कह करके, उद्योग करने के लिए कह करके अब शिक्षा दे रहे हैं, यूयम तदनुमोदध्वम यदि क्षंत असुरा असुरा, हे देवताओं तुम लोग उनकी सारी बात मान लो जो दैत्य कहते हैं, जो कहें वो मान लो, क्योंकि आखिर बलवान के साथ संधि करना है तो उसकी बात नहीं रखेंगे तो क्यों संधि करेगा, संधि करने के लिए तो वो बलवान है, जो कहे वो तो करना ही पड़ेगा। तो जद असुरा इच्छन्ति तब जुयम अनुमोदध्वम, जो वो कहें अनुमोदन कर लो, जैसे भगवान शुरू से ही सिखा रहे हैं कि जब हम लोग मुख पकड़ेंगे वासुकी नाग का तो वे कहेंगे हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, क्या हम कम वीर हैं क्या है? ऐसे ही टीवी में अखबार में हल्ला हुआ कि ये लोग पूछ पकड़े थे, क्या हम लोग हीन परिवार के हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं क्या, नहीं हम लोग क्यों पूछ पकड़ेंगे, ये कथा आएगी तो भगवान संकेत कर रहे वो जो कहें वो तुम लोग मान लो। अगर वास्तव में देवता लोग विष पीने के लिए चालू किए होते ना तो उस सबसे पहले छीन कर पी गए होते असुर, उनका स्वभाव है देवताओं का विरोध करना। वो तो विष उत्पन्न हुआ तो सब भाग चले, तो वो भी भाग चले, नहीं तो अगर देवता लोग पी करके दो चार मरे होते तो वो भी पिए होते कि हमारा भी नाम बढ़ेगा, शान के साथ मरेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे। और असुर तो मरने पर पड़े ही रहते हैं, सुसाइड बम से जहां तहां हम भी मरेंगे दूसरों को भी मारेंगे, तो मरने पर तो वो तो लात दिए ही रहते हैं, ग्लोरियस डेथ हमारा होगा इस तरह से, ये असुरों का विचार है। तो यही खैरियत थी कि देवता लोग बीस बीस नहीं पिए, नहीं तो असुर सब पी करके मर गए होते, पहले छीन करके पी गए होते। ऐसा इनमें विरोध रहता है, विरोध देवताओं से ठीक उल्टे चलना उनका स्वभाव है दैत्य। तो भगवान कह रहे हैं कि असुरा जद इच्छन्ति, जो इच्छा करते जो करना चाहते तद अनुमोदध्वम, झगड़ा मत करना, नहीं तो झगड़ा से भी काम नहीं होगा, बीच में सारी गाड़ी फंस जाएगी। तो जो वो कहे वो मान लेना, भगवान अपने भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, और खास करके बलवान के साथ जब संधि किया जाता है तो उसकी बात उसकी शर्त तो माननी पड़ेगी, नहीं तो सब संधि होगी ही नहीं, काम नहीं होगा। द्वियम तद अनुमोदम यदि क्षंत सुरा सुरा न शरण भेण सिद्धंती सर्व्यर्था संत याजत। जितने भी प्रयोजन है इस संसार में क्रोध करने से सिद्ध नहीं होते हैं, उद्विग्न होने से सिद्ध नहीं होते हैं। अगर अमर्श करोगे कि हम उसकी बात नहीं रहेगी, हमारी बात रहेगी, तो फिर काम नहीं होगा। संरम्भ का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध से काम नहीं होता है, क्रोध से काम बिगड़ जाता है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है इस दृश्य को कि क्रोध से काम बिगड़ जाता है। एक बार एक व्यक्ति झगड़ा किया था ट्रेन में एक व्यक्ति से, तो वो उसके सीट पर अपना पैर दे रहा था, जो बगल में सीट होता है ना ट्रेन में दो सीट, तो यहां बैठा था वहां पैर दे रहा था। सबसे पहली बार मैं बॉम्बे से जा रहा था सासाराम, तो वो उस सीट पर पैर दिया था, तो वो आदमी सुशील थे, वो कहा कि भाई पैर हटा लो, तू जान बुझ कर नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। तो जाते जाते मुगल सराय पार हो गया, उसका उपद्रव मैं देख रहा था आंख से। जब चंदौली के पास मुगल सराय के बाद का स्टेशन पड़ा, तो वो कहे, वो थोड़ा पहलवान टाइप के थे जो सुशील अच्छे थे, हटाओ क्या हो जाता, आपको जगह नहीं है, बैठिए हम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। वो तुरंत पैर पकड़ करके ऐसे ऐठने लगे उसको, और सीट से नीचे गिरा, और सीट से नीचे गिरा तो झगड़ा हो गया, और तब तक फिर उठ करके कोई व्यक्ति सामान जो होने लगा, स्टेशन आ गया उतरने का, एक टीन का बक्सा उसके सिर पर लगा गिरा। तो फिर हल्ला हुआ, क्या झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, अगले स्टेशन पर पुलिस पकड़ करके उसको ले गए, उतार लिया स्टेशन से, उस व्यक्ति उतार करके पता नहीं कहां ले गया, तो अस्पताल में चाहे मारने के लिए ले गया, जहां भी ले गया। केवल पैर को हटा लेना था, अपने सिर पर कर लेना था, नहीं हटा, क्रोध कर रहा था। तो क्रोध से सर्वे अर्था, सारे प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं। न शरम भेण सिद्धंति सर्वेर्था शांत हो जाता है, सांत्वना रखने से, शांति रखने से सब काम होते हैं, क्रोध से काम नहीं होता है। इसीलिए दैत्य जो भी कहे मान लेना, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा ना। और भगवान ने यह भी कहा कि सबसे पहले विष उत्पन्न होगा, न भेतव्यम कालकूटाद विषाद जलद ही संभवात, कालकूट जहर पैदा होगा, पर डरना मत, कोई मरेगा नहीं। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कोई मरेगा नहीं, इसका मतलब भगवान ने संकेत किया कि उसको रुद्र पी जाएंगे, शिव जी पी जाएंगे, तो कोई भय करने की बात नहीं, कोई मरेगा नहीं। लोभ कार्यो नैव जातु, भगवान शिक्षा दे रहे हैं, निषेध पलक, लोभ मत करना कभी, कदापि लोभ मत करना। लोभ का अर्थ है कि समुद्र से और भी रत्न उत्पन्न होंगे, स्त्रियां उत्पन्न होंगी, कामधेनु उत्पन्न होगी, कल्प वृक्ष उत्पन्न होगा, बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होंगी, तो उसमें से अगर कोई चीज मिले तो उससे ज्यादा की इच्छा मत करना है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, संतोष करना जितना मिला मिला, नहीं मिले तो कामना मत करना, कामस्तु वस्तु, इच्छा मत करना कि हमको मिले, वस्तु की इच्छा मत करना। और कदाचित इच्छा कर गए और कुछ वस्तु मिली तो उससे ज्यादा का लोभ मत करना, और कदाचित नहीं मिली कोई वस्तु अपनी इच्छा के अनुसार या कुछ भी नहीं मिले तभी न रोसा, क्रोध मत करना। कितना भगवान सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, काम मत, काम क्रोध लोभ मत करना। गीता में भगवान कहते हैं तीनों नरक के गेट हैं, रास्ता है, नरकस्य द्वारम। तो समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, तो किसी वस्तु की इच्छा मत करना। उसके बाद भी अगर कुछ मिल जाए तो उससे ज्यादा की इच्छा मत करना, लोभ मत करना, संतोष करना। और कुछ भी ना मिले और दूसरा विपक्ष ले ले, दैत्य लोग लेंगे ही, वहां तो चलेगा लूटना। वो जब जब उत्पन्न होगा तो दैत्य यही कहेंगे हम लेंगे, हम लेंगे। बड़ा भगवान को हिसाब करना पड़ता था। वहां इंद्र थे और सब देवता थे, दैत्य थे, और जो भी उत्पन्न होती थी वस्तु उसको देखकर कहते थे हम लेंगे। केवल कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ तो उस समय वो नहीं लेना चाहते थे। ये पेड़ रुख कौन लेगा, झाड़ लेकर के क्या कर, वो नहीं जानते थे कि कल्प वृक्ष है। लेकिन ऐसे टर्म पर भगवान के ट्रिक से सब हो रहा था। वो आएगा प्रसंग कि इसके बाद कौन लिया, इसके बाद कौन लिया, इसके बाद कौन लिया, इसके बाद कौन लिया। तो भगवान वहां थे और कहते थे नहीं, अब आपका टर्न बीत चुका है, अब देवताओं की बारी है। देवताओं को कहते थे नहीं, आपका टर्न बीत चुका है, दैत्यों की बारी है। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण चीजें होती थी तो देवताओं के बारी में भगवान लाते थे। वारुणी मदिरा तो एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई तो उसमें टर्म आया था दैत्यों का, तो वो लोग तो चाहते ही थे कि ये सुंदरी स्त्री मिले, तो वो लोग तुरंत ले लिए। असलों का काम ही है शराब पीना, हमेशा गांजा भांग आदमी रहते हैं, गांजा भांग शराब में। वारुणी मदिरा तो स्त्री के रूप में हो गई। तो इस तरह से बंटवारा, तो भगवान अभी से समुद्र मंथन में ये सब शिक्षा दे रहे हैं, कोई अभिलाषा मत करना, लोभ मत करना और क्रोध मत करना। ये भगवान ने शिक्षा दिया और भी दिग्दर्शन कराया कि ऐसे मथना है, मंगलाचल लाना है, वासुकी नाग को साजी करना है। जब भगवान से पूछा उन लोगों कि वो कैसे तैयार होगा, वासुकी कैसे तैयार होगा, मरने के लिए उसको खींचा जाएगा पर्वत में लपेट करके, तो वो कैसे तैयार होगा। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा अमृत में से देने का प्रॉमिस कर लेना, थोड़ा अमृत दे देना उनको, उसके उस लोभ से वो लगेगा उसमें चाहे देह रगड़ा जाए खींचा जाए फिर भी अमृत मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने सब प्लान किया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति देवान समादिश्य भगवान पुरुषोत्तम तेषामंतर दधे राजन स्वच्छंद गतिरीश्वर। भगवान पुरुषोत्तम श्री विष्णु स्वच्छंद गति, स्वच्छंद गति जो भी करना चाहे कर सकते हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं, प्रकट होना चाहे प्रकट हो सकते हैं, तिरोहित होना चाहे तिरोहित हो सकते हैं, दिखाई पड़ना चाहे दिखाई पड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं, किसी को भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो स्वच्छंद गति भगवान पुरुषोत्तम देवताओं को ये कह करके और उनके देखते देखते उनके बीच में ही अंतर्दध अंतरहित हो गए, अंतर्दध है, कहीं गए नहीं, उनके देखते देखते वहीं उनके दृष्टि से बिल्कुल गायब। तो स्वच्छंद गति ईश्वर हे महाराज परीक्षित, भगवान की विशेषता है वे अंतरहित हो गए। जब भगवान अंतरहित हो गए तब अथ तस्मै नमस्कृत्य, अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जगमतु स्वमसम धामो पेर बलिम सुरा। तो भगवान जब अंतरहित हो गए तो श्री ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम किए थे, जिधर अंतरहित हुए थे जहां खड़े थे वहीं उधर प्रणाम कर रहे, और भवश्च भगवान शिव ने प्रणाम किया। और इसके बाद दोनों व्यक्ति स्वम स्वम धाम चले गए। पेयतु अपने अपने धाम चले गए, भगवान शिव कैलाश गए और ब्रह्मा जी सत्य लोग चले गए। अभी समुद्र मंथन का जो काम था ये अन्य देवताओं का था, ये दोनों चले गए। तो दैत्यों के पास, दैत्यों के जो स्वामी थे उस समय बलि महाराज, बलि महाराज के पास देवता सब गए। और बलि महाराज कहां रहते थे उस समय तो कोई जिक्र नहीं, जहां भी हो सब गए देवता बलि महाराज के पास। तो दृष्ट्वा अरिनप्य संयत्ताम जात क्षोभन स्वनायकान निषेधत दैतराज श्लोक्य संधि विग्रह कालवित। जब बलि महाराज के पास जा रहे थे तो उस लोक में जहां दैत्य रहते हैं वहां इन देवताओं को देखा असुरों ने, सहज द्वेष रहता है, सहज बैर। तो जो सेना नायक थे महाराज बलि के, उन्होंने देखा कि देवता लोग न तो कवच बांधे हैं न धनुष बाण लिए हैं, कोई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सिविल ड्रेस में गए थे, संधि करने जा रहे हैं ना, तो अब अपना कोई राइफल या और सब लेकर के थोड़े जाएं, सामान्य वेश में गए थे संधि करने के लिए। भगवान ने शिक्षा दिया था कि ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, क्या बोलना है भगवान ने सब बताया था इंद्र को। तो गए तो जो असुर थे, आखिर असुर असुर हैं, देख रहे हैं कि देवता कवच नहीं बांधे हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं, फिर भी वे जात क्षोभान, उनमें क्षोभ आ गया, वो इनको मारने के लिए तैयार हो गए, देवताओं को मारने के लिए तैयार हो गए। कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको इस बात से बहुत कठिनाई अनुभव होती है कि हमारे घर पर कोई क्यों आया। जैसे मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, कुत्ते छोटे छोटे होते हैं, मालिक कुछ नहीं बोलता और ये भौं भौं चालू करते हैं। उनका ये कहने का मतलब है तुम क्यों आए, हमारे घर के पास क्यों आए, कोई चोरी करने के लिए आया है कि क्या करने के लिए आया है, और भौंक करके इसके बाद सो जाते, चुपचाप हो जाते। ये स्वभाव है, इसको स्वभाव कहेंगे। तो दैत्यों का स्वभाव है देवताओं को देख करके एकदम ज्वलन होना, चित्त में क्रोध हो जाना, सहन नहीं कर सकते, तो उनको मारने के लिए तैयार हो गए, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए इनको मारना है। दैत्यराज बलि महाराज ने निषेध किया, निषेधत दैत्यराज श्लोक किया, मना किए, नहीं इस समय इनको नहीं मारना है, वह घर पर आए हैं, क्योंकि बलि महाराज संधि विग्रह कालवित, कब लड़ाई करनी चाहिए और कब मेल करना चाहिए इसको जानते थे, समय ज्ञाता थे। चाणक पंडित जी कहते हैं कि शत्रु अपने घर पर आवे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसको ऐसा मन में हो जाए कि मैं शत्रु के घर आया हूं कि मित्र के घर आया हूं, उसको ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने शत्रु के घर पर आया। शत्रु भी अगर अपने घर पर आया है तो उसको एक प्रिय अतिथि की तरह सम्मान देना चाहिए। बलि महाराज को श्लोक के कहा गया है, श्लोक के का अर्थ है कृत्य, जो कीर्ति के योग्य, उनकी कीर्ति फैली हुई है सारे जगत में, तो देवताओं का सम्मान किए, ये अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो उन्होंने उन सबको संकेत किया, मना कर दिया। यह है महानता। और सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, जात क्षोभान निषेधता, उनको मना किए बलि महाराज। तब इसके बाद हम वो लोग शांत जब हो गए, हृदय सांस ले रहे थे, तैयार थे कि अब ये ऐसे इससे बढ़ करके अच्छा अवसर क्या होगा इनको मारने का, जान से खत्म करने के लिए। इंद्र आदि देवताओं को मारने को तैयार थे, लेकिन बलि महाराज ने मना किया है। मार सकते थे या नहीं दूसरी बात है, लेकिन मारने के लिए तैयार हो गए। तो बलि महाराज ने मना किया तो उनको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक क्या, इनके विषय में बहुत से श्लोक प्रसिद्ध हैं। श्लोक का अर्थ जस होता है, कीर्ति, कीर्तिशाली व्यक्ति जिनकी प्रशंसा सब लोग करते। उन्हें मना कर दिया तब तो सांस लिए शांति का बैठ अपना, सब स्वीकृति खड़े थे, बड़े बड़े असुर साधारण नहीं थे, सब हरे थे वहां। तो इसके बाद तय हुआ, बलि महाराज ने कहा कि नहीं नहीं इनके साथ हमारा मीटिंग है, तुम लोग शांत रहो। तब देवता लोग गए, बलि महाराज वहां जाकर के बैठे थे। पहले इनका स्वागत किया गया, देवताओं का स्वागत हो लिया, तब इसके बाद मीटिंग हॉल में जहां उनके मिलने का स्थान था, तो बलि महाराज वहां बैठे थे। ते वैरोचनिमासीनम गुप्तम चासुर युद्धपै श्रिया परमया जुष्टम जिता शेषम उपागमन। बलि महाराज के पास गए देवता लोग जिनका स्वागत हो गया, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गए जहां बलि महाराज बैठते थे। तो बलि महाराज के बैठने का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसे हैं वे असुर युद्धपै गुप्तम, असुर सेनापतियों के द्वारा वे सुरक्षित थे। इसका मतलब है कि चारों तरफ विभिन्न गेट पर सब जगह असुर सेनापति थे, दूर में वो था उनका भवन सब, तो सब खड़े थे अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ। असुर युद्धपै ही असुर सेनापतियों के द्वारा गुप्तम सुरक्षितम देखा देवताओं ने, दैत्य सेनापतियों के द्वारा सुरक्षित हैं। और श्रिया जुष्टम परमया श्रिया जुष्टम और परम तेज से ऐश्वर्य से धन से युक्त है। तीसरा विशेषण दे रहे हैं जिता शेषम, उन्होंने सारे त्रिलोक को जीत लिया था। जीतम अशेषम त्रैलोकम जेनाई थी, जिनके द्वारा सारा संसार जीत लिया गया, जिता शेषम। ऐसे बलि महाराज बैठे थे, उनके पास महेंद्र जा रहे हैं इंद्र भगवान, और उनके साथ उनके भाई और देवता सब गए। बैठे बलि महाराज ने बहुत उत्तम आसन पर बैठाया, वो झगड़ा का समय नहीं था, अब संधि करने का समय है। भगवान भेजे थे इंद्र को शिक्षा दे करके, तो उसी ढंग से भगवान की एक एक बात याद करके वे वहां बैठे। तो बलि महाराज ने कहा कि कैसे आए, क्या सेवा करें आपकी। इंद्र ने पूछा था भगवान से कि कैसे चालू करेंगे, क्या कहेंगे, तो भगवान ने कहा था कि साम नीति से काम लेना, सांत्वना। महेंद्र सुलक्षणया वाचा शांतित्वा महामति। एक तो महेंद्र स्वयं ही महामति है, महाबुद्धि है, तब तो स्वर्ग के राजा है ना, सौ यज्ञ किए हैं, सौ अश्वमेध यज्ञ, इस वक्त स्वर्ग के राजा बने हैं, बिना बुद्धि के थोड़े इतने बड़े राजा बन जाएंगे। तो महामति, जिनकी महती मति है, वे स्वयं महान बुद्धि है। तो अभ्यभाषत पद सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, ये चालू किए बोलना इंद्र बलि महाराज से, और वो सब बात क्रम से बताए जो पुरुषोत्तम से सीखे थे, जो भगवान विष्णु से सीखे थे, वो सब बात बताए। उन्होंने इस तरह से चालू किया कि हम लोग तो एक ही परिवार के हैं, दैव जोग से कैसे हम लोग दूर दूर रहने लगे, और बीच में झगड़ा भी हुआ, लेकिन अब झगड़े की बात तो करनी नहीं, हम लोग एक हैं, एक ही परिवार के हैं। कहने के लिए दो दल बन गया, लेकिन हम लोग तो एक ही थे, एक ही साथ रहते थे, 1947 के पहले एक ही जगह रहते थे, एक ही देश था। लेकिन अब जब मेल करना है तो कहना होगा ना काल को क्या कहा जाए, काल ने हम लोगों को पृथक कर दिया, काल ने हम लोगों में भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन हम लोग एक ही कश्यप जी की संतान है, माता दीति से आप लोग हैं, हम लोग अदिति से हैं, पिता एक ही है, तो दीति की संतान दैत्य कहलाते हैं और माता अदिति की संतान आदित्य कहलाते हैं। ऐसे ऐसे अगर हम लोग मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। समुद्र में औषधि आदि डाल करके, लता पता सब डाल करके, और उसको यदि मथा जाएगा तो उसे अमृत उत्पन्न होगा। उस अमृत का गुण होता है कि वह सबको अमर कर देता है, जो पीता है वो अमर हो जाता है। लेकिन ये बिना सहयोग के सबके काम होगा नहीं। वैसे यदि आप चाहें तो आपके सहयोग से काम हो सकता है। वास्तव में आप ही मुख्य हैं, आपका आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो इन्होंने एक और भी बात कहा महेंद्र ने कि और विष्णु भगवान ने ये सब बताए हैं। तो बलि महाराज ने पूछा कि ये कैसे विश्वास हुआ कि अमृत उत्पन्न होगा ये करने से वो करने से? नहीं, वो स्वयं ही भगवान बताए, स्वयं भगवान बताया और हमको कहा कि जाकर के उनको कहो, सब सबके यहां रोग है, दुख है, बुढ़ापा है, बहुत तकलीफ है, सारा रोग खत्म हो जाएगा, बहुत लंबी जिंदगी रहेगी, कोई दुख नहीं। और भगवान तो सम भाव रखते हैं आप लोगों के प्रति भी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन लोगों को भी पीने का अवसर देना चाहिए, उनसे भी उनको भी इसमें रखना चाहिए। तो अगर आपको स्वीकार है तब मंदराचल ले चलने के लिए चलना चाहिए, हम लोग समुद्र मंथन करें। बार बार महेंद्र इंद्र भगवान बोल रहे थे कि यदि आपको अच्छा लगे तो, ऐसे भगवान ने कहा है और हमको भेजा है उन्होंने कि जाओ उनसे संधि करो, तो लोग क्यों झगड़ा करते रहते हैं, जाकर के संधि करो और मेल करके ये काम करो, सब लोग सुखी हो जाए। तत्व रोचत दैत्य से दैत्यराज बलि को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और अन्य जो असुराधिप वहां थे, चाहे ये असुराधिपा, अन्य जितने भी असुराधिप बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे ना, जैसे कोई आदमी बैठता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, राष्ट्रपति के साथ, तो सब सांसद बैठेंगे ना, कि साधारण आदमी तो वहां जा नहीं सकते। असुर अधिपा, असुरों में जो सब श्रेष्ठ लोग थे बड़े बड़े, वे सब बैठे थे। तो उन लोगों में ने भी अनुमोदन किया इंद्र की बात का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो का नाम सुखदेव गोस्वामी रख रहे हैं। संबर और अरिष्ट नेमी च, संबरो अरिष्ट नेमी च, ये मुख्य थे। संबरासुर और अरिष्ट नेमी इसमें बैठे थे। और भी त्रिपुरवासिना, जो त्रिपुर तीन नगर जो आकाश में रहते थे, अलक्षित कभी कभी होते थे, जिनको ध्वस्त किया था भगवान शिव ने बाद में, तो उस नगर में रहने वाले जो भी असुर थे वहां जुटे हुए थे ये प्रधान लोग, और सबने अनुमोदन किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुमोदन किया। बहुत अच्छा लगा उनको कि अमृत उत्पन्न होगा, और कहां से देवताओं को ऐसी अकील आई, तो अमृत उत्पन्न होगा तो ये तो पहले से ही कमजोर हैं, इनसे मथवाएंगे और अमृत उत्पन्न होगा तो हम लोग पी जाएंगे। मन में कपट था और उधर से भी कपट है, इनसे केवल काम कराना है। पर देवताओं में और दैत्यों में ये भेद है कि दैत्यों को अपने पुरुषार्थ का बल था, अपने पर भरोसा, और देवताओं को भगवान पर भरोसा था, भगवान हमें पिलाएंगे अमृत, भगवान करेंगे। पर कपट तो दोनों तरफ से था। तो एक तरफ का दल भगवान विष्णु के आश्रय में था और दूसरा अपने पुरुषार्थ, अपने धन, अपनी बुद्धि के बल में। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबने अनुमोदन किया, बहुत खुशी हुई। तो उस संविदा पर, रिसोल्यूशन पर साइन हो गया बलि महाराज का और इंद्र का, दोनों का बन गया, ठीक है ये काम होना चाहिए। ततो देवासुरः कृत्वा संविदम कृत सौहृदा, बाहर से देवता और असुर कृत सौहृदा एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाने लगे, प्रेम कर लिया गया। बहुत दिनों के बाद दोनों परिवार मिला था, बहुत वर्षों के बाद, कोई कपट से मिला है लेकिन फिर भी चलने लगा, ठीक है ठीक है। तब किस दिन चलना है मंगराचल लाने, तो भगवान इंद्र ने कहा कि, भगवान ने कहा है कि जितना शीघ्र हो सके वही ठीक है। अच्छा ठीक, अविलंबितम, तो ये लोग चले सौहार्द करके। वही दल जो परस्पर लड़े थे, मारे थे देवताओं को, और देवता भी कभी कभी मारते हैं असुरों को, लेकिन अब बाहर से इसको भूल गए, अमृत पीने की लालसा से, और गए उद्यमम परमम चक्रुर अमृतार्थे परम तप। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले परीक्षित महाराज, आपके परिवार में भी कभी कभी दोनों मिलकर रहते थे, पांडव और कौरव, और कभी कभी महासमर छिड़ जाते, यही हुआ ना, तो ऐसा ही होगा जैसे आपके परिवार में हुआ, पहले मिलकर रहते थे, इसके बाद कुरुक्षेत्र में दोनों लड़े, लड़ेंगे अंत में, लेकिन अभी मेल चल रहा है। तो आप सुने होंगे अपने बाप दादों के विषय में कि क्या क्या किए, मेल हो गया, फिर चले। परम उद्यमम, बहुत उद्यम किए, बहुत परिश्रम किए। वास्तव में परिश्रम करने से ही कार्य सफल होता है, लक्ष्मी मिलती है। उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहा गया है कि उद्यम करने से, मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं, घर में बैठ कर केवल मनोरथ करने से, सोचने से काम नहीं होते हैं। यानी मन में सोचा करे ये करना है, वो करना है, वो करना है, दरवाजा भी नहीं खुला है, उससे क्या होगा, काम करने से होता है ना सब अर्थ सिद्ध। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, मनोरथ करने से कुछ नहीं होता है। तो उदाहरण दिया गया है कि सिंह जंगल का राजा है, राजा माना जाता है, लेकिन उसको भी अपना शिकार ढूंढने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये नहीं कि अपने मांद में गुफा में हो और सोचा करे, सो जाए और कहे कि अब भगवान हमारे मुंह में कोई न कोई जानवर डालेंगे। नहीं सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप कोई जानवर नहीं आता है, न कोई हरिण आएगा, न कोई गाय आएगी, न कोई, अपने आप नहीं, उसको पकड़ने जाना पड़ता है अपना शिकार। ऐसा सिंह बहुत बलवान होता है, लेकिन पशुओं को ये इस डर से कि ये मुझको मारेगा इसलिए जा करके ढुक जाए उसके मुख में, ऐसा ना कोई नहीं करता है। नहीं सुप्तप से सिंह से परविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में कोई भी हरिण आदि जाकर के सामने नहीं घुसता, तो उसको दौड़ करके पकड़ना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो मनोरथ से कार्य नहीं होते हैं, मेहनत से कार्य होते हैं। तो देवता और दैत्य दोनों अमृत के लिए बहुत प्रयास किए। पहला प्रयास क्या था, पहले तो मथानी लाना था, मंथन दंड क्षीर सागर के पास ले जाना था। तपस्ते मंदर गिरीम ओजसोत्पाट्य दुर्मदाह नंदंत उद्धिम निन्यु सक्ता परिघवा हवा। देवता और दानव दोनों सक्ता समर्थ थे, एक तो नई नई संधि हुई थी तो इसलिए उत्साह बढ़ा हुआ था, परिघवा हवा, उन लोगों की भुजाएं लोहे के मुदगर के समान थी, परीख के समान थी, मोटी मोटी लोहे के समान, लोहे के मुदगर को परीख कहते हैं, परीख बाहवा कि बाहें समर्थ थी, गए और आपस में मिले हुए थे। दुर्मदाह, दुर्मदाह का अर्थ उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, और जाकर के जय जयकार करते हुए उखाड़ लिए पर्वत को चारों तरफ से लग करके और पकड़ करके उखाड़ लिए। बहुत जोश था उनमें और बहुत बल था। सक्ता का अर्थ यहां, सक्ता मैंने समर्थ। ये आज का आदमी क्या सोचेगा, पहाड़ उखाड़ने का, एक पत्थर उठाने में ही नानी मर जाएगी, पत्थर उठाना ही कठिन है, तो पहाड़ उठा लेना, ये सकता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब समर्थ थे, परिख बाहवा और दुर्मदा, पहाड़ उखाड़ लिए जय जयकार करते हुए, और इसके बाद नदंत नाद करते हुए, नारा बोलते हुए लेकर के चल दिए बहुत तेज। नदंत उद्धिम निन्य, जोर से बोलते हुए जय जयकार करते हुए और चल दिए। जो भी कीर्तन गा रहे होंगे, देवता लोग तो कीर्तन गा रहे होंगे, दैत्य लोग भी अपने कोई न कोई इष्ट आदि का स्मरण कर रहे होंगे। वो सब चले, पूरे रास्ते नदंत गरजते हुए ले चले, गरजते हुए ले चले काम कर लेकिन दूर भारत वह श्रांता शक्र वैरोचना दे अपार यंत स्तंभ बोधुम विवसा विजहू पथि। एक तो दूर देश ले जाना था और बहुत भारी पर्वत था, टांग तो लिए और ले चले बहुत फुर्ती से गरजते हुए, परंतु दूर देश चलना था, दूर बहुत दूर था, मंदराचल कहां कहां, क्षीर समुद्र, वहां से वहां ले जाना था, तो दूर ले चलने में और भारी वजन उठा करके चले थे, तो यहां तक कि बलि महाराज और इंद्र भी थक गए। जब बलि और इंद्र थक गए तो बीच वाले अब क्या करें, तो सब थक गए, श्रांत हो गए, बिल्कुल श्रांत हो गए, उनके हाथ उनके ढीले होने लगे, और पूरे रास्ते कोई भोजन आदि करने का अवसर नहीं मिला। टांगे थे पहाड़, उसको रह करके तब न कुछ पिएंगे, लेकिन थक गए पूरा। और प्रत्येक आदमी यही सोचता था कि अब रखा जाए, रखा जाए, प्रत्येक आदमी मतलब व्यक्ति, आदमी वहां नहीं थे वहां आदम से पैदा हुए लोग नहीं थे वहां तो देवता दैत्य थे, लेकिन सब चाहते थे कि अब रखा जाए, रखा जाए, रखा जाए, लेकिन कोई कहता नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम क्यों कहें, हम क्यों कहें। बल्कि दूसरा कोई कहता था चले ना, चले ना, हाँ हाँ चले चले, अरे इसमें बेइज्जती क्या होती, कह देना चाहिए कि थक गए हैं, अब रखा जाए, ढंग से रखा जाए। कोई नहीं कहा, सब अपने अपने जोश में थे और अपने इज्जत के फेर में थे, कोई नहीं कहा। अंत में जाते जाते सबका हाथ बिल्कुल सुस्त हो गया, पैर में चलने की शक्ति नहीं, कोई कहा नहीं कि रखो रखो, पर्वत अकस्मात गिर ही पड़ा है। और छोड़ दे, जो किनारे किनारे लगे थे बलवान थे, वो तो हट गए, झटका केवल लगा और बीच में वो पूरा चक्की गिरी पूरा पहाड़ गिर गया सोने का, और जो बीच में पड़े वो तो चकनाचूर हो गए सब, और बगल वालों को भी, किसी का कंधा टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की कमर टूट गई, एकदम बेदम हो गए थे ऐसे। निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णयामास महता भारेण कनकाचल। वह कनक का अचल, न चलती इति अचल, जो चले नहीं वो अचल है, वो अचल पहाड़ गिरा। और बहुन अमर दानवान, बहुत दानवों को और देवताओं को चूर्ण कर दिया। यहां बहुन शब्द से ये तात्पर्य है कि जितनी संख्या में गए थे तो 50% से ज्यादा मर गए। ये दुर्घटना हो गई। लेकिन अद्भुत भगवान की लीला है। तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरु कंधरान विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुणध्वज। भगवान तो सब जगह है, सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई नहीं था कि यहां से उनको फोन करना पड़ेगा भगवान को वैकुंठ में कि ये दुर्घटना हो गई। ये कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान ने देखा। जो मर गए थे वो तो मर गए थे, लेकिन और भगवान सब मरे हुए को और इनके देखे। भगवान तांस तथा भग्न मनस, जो जीवित थे उनका अब समुद्र मंथन करने का उत्साह भग्न हो गया, मन भग्न हो गया। मतलब मन में अब थोड़ा भी उत्साह नहीं रहा कि समुद्र मथेंगे। पहले मंदराचल पहुंचेगा कैसे? अब पहुंचना तो दूर की बात है, अमृत पीने की बात भी बहुत दूर हो गई। अब ये कैसे जिएंगे और हम कैसे जिए? हमारा हाथ टूट गया, मस्तक टूट गया, कमर टूट गया। अब इस तो भगवान के बारे में वर्णन है कि भगवान ने देखा, विचार किया, भग्न मन से उत्साह समाप्त हो गया। समुद्र मंथन करने का, अमृत पीने का सब एकदम सोच ही नहीं सकते थे। और भग्न बाहु रुकंधरान, किसी किसी की बाहें टूटी थी, भग्न बिल्कुल। और उरु कमर टूट गए थे। और कंधरान, कम माने मस्तक, मस्तक को धारण करता है कंधर, कंधा टूट गया। इसको जान करके बभुआ गरुण ध्वज, गरुण पर चढ़े हुए श्री भगवान तुरंत आविर्भूत हो गए, कहीं से आए नहीं, आविर्भूत हो गए। बभुव वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान सब जानते थे कि ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। भगवान कृपा करके प्रकट हो गए। देखिए भगवान की ये विशेषता, वो सर्वज्ञ है, सब जगह है, सर्व व्यापक है। यह दुर्घटना देखकर तुरंत प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया? गिरीपात विनिष्पृष्ठान विलोक्या मरदानवान इच्छया जीवया मास निर्जरा निर्वरणान जथा। वहां प्रकट होकर के भगवान पहले देखे विलोक्या, देवताओं को देखे कि ये बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, बहुत दर्द है और शरीर कट गया है, जहां पर व्रण हो गया है। और जरा का अर्थ होता है पीड़ा, शरीर में बहुत पीड़ा है, कोई छटपटा रहे हैं, कोई कटे हुए हैं। भगवान इनको देख करके निर्जरान कर दिए, सारा दर्द खत्म हो गया, देवताओं का दानों का सारा दर्द खत्म हो गया और सारे घाव तुरंत भर गए। भगवान के देखते हैं भर गए। और अपने कृपा दृष्टि से भगवान ने सबको जीवित कर दिया, जो मरे थे उनको जीवित कर दिया तत्काल। इच्छया, अपनी कृपा दृष्टि से जीवया मास, सबको जीवित कर दिया। यह है भगवान का गुण, भगवान की विशेषता। इस संसार में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हो जाए तो रेल मंत्री को हो सकता है पता लगने में बहुत देर हो जाए। पहले अब कोई किसको पता लगेगा कि रेल दुर्घटना हुई है? तो वो व्यक्ति वहां से फोन करेगा, वहां से करेगा, वो करेगा, वहां से वो फोन करेगा, तब कुछ गाड़ियां चलेंगी। कहां रेल दुर्घटना हुई है, उधर रोड है कि नहीं है, कैसे प्रकट हुआ जाएगा, प्रकट होकर के क्या कोई करेगा? क्या कोई शक्ति रखता है कि केवल आंख से देख दे और सारे रोगी ठीक हो जाए? आंख से देखे और सारा घाव खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए और मरे हुए जी जाए, क्या कोई कर सकता है ऐसा? घटनाएं तो होती रहती है ना, रेल दुर्घटनाएं होती हैं, रेल में दुर्घटनाएं होती हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन मनुष्य जीव कितना तुच्छ है, कितना कमजोर है और अल्पज्ञ है, ये सब बातें समझनी चाहिए भगवान की लीलाओं द्वारा। भगवान को कोई जरूरत नहीं पड़ी कि इस डॉक्टर को बुलावे, उस डॉक्टर को बुलावे, इस हॉस्पिटल में भर्ती करे, उसमें भर्ती करे। तुरंत गरुण जी पर चढ़े हुए, प्रकट हुए और कृपा से देखने लगे। जो देवता बचे हुए थे वे ऐसे भगवान पर देख रहे थे जैसे कोई बच्चा दुख में पड़ करके रो करके अपने पिता की तरफ देखता है। कितना बड़ा आश्वासन है, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लाने की। भगवान के दृष्टि में, आंख में वो शक्ति है, उससे देख करके सबको जीवित कर दिए और सारा घाव भर गया, सारा उत्साह भर गया, दर्द आदि सब खत्म हो गया, फिर उत्साह भर गया। और भगवान दूसरी सहायता क्या किए कि तुरंत ही मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठाए, अपने चार भुजाओं में से एक भुजा से भगवान उसको उठाए और गरुड़ जी पर रख दिए। और इस वक्त गरुड़ जी अपने पंख को जमीन से सटाए हुए थे, उन्होंने संकेत किया सारे देवताओं को और दानुओं को, तुम लोग चढ़ो गरुड़ जी पर। भगवान पैदल भी नहीं चलने दिए बिना वजन के अब चलना था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सब चलो गरुड़ जी पर, सब चलो। गरुड़ जी चिन्मय है, वो बहुत बड़ा बन सकते हैं। गरुड़ जी अपना पंख फैलाया, सबको चढ़ा लिया और कंधे पर रखा गया मंदराचल, भगवान उठा करके रखे। या नहीं कि फिर कहे कि सब मिल करके गरुड़ जी पर रखो अब वो साहस भी नहीं था, उठाने में भी उन्हें डर था कि फिर गिर जाएगा। तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से रखा और एक हाथ से रखा। भगवान समय समय पर अपनी शक्ति को दिखाते हैं इस संसार में, फिर भी अज्ञ लोग भगवान को नहीं समझ पाते। इतने अज्ञ इस पृथ्वी पर हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं कि इन सब लीलाओं को पढ़ करके भी वे नहीं समझ पाते। कह देंगे सब कल्पनाएं हैं, ये है वो है ऐसा, और उनके लिए और दुनिया में जो कुछ भी हुआ है सब बाई चांस हुआ है, भगवान काहे को करने जाए, करने जाए। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यही फाल्स कथा सुनाने के लिए बैठे थे और ऋषि मुनि सब बेवकूफ थे जो वहां बैठे हुए थे सुन रहे थे। ये सब सत्य कथाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं। तो अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से सबको जीवित कर देना और उनके घाव कटे छटे सब ठीक हो जाए, कोई थकावट नहीं, क्लांति नहीं, कुछ नहीं, फ्रेश जीवन हो जाए। बल्कि देवता और दानव पहले से ज्यादा अच्छे हो गए भगवान की आंखों से देखे जाने से। अब तो उनका शरीर भी सब प्रसाद हो चुका था, नई शक्ति, नया जोश, नया उत्साह सब कुछ भर गया मन में और शरीर में, बिल्कुल ठीक हो गया। और उन्हें एक अवसर मिला भगवान के साथ गरुड़ जी पर चढ़ने का। भगवान अपने पिता हैं, उनके साथ यदि बच्चे उनकी सवारी में बैठे तो स्वाभाविक है वे सब गरुड़ जी पर बैठे। पर्वत भी चढ़ाया गया, वे सब भी बैठे, इसके बाद भगवान भी चढ़े और गरुड़ जी उड़ करके तुरंत क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिए। वहां जाकर के उतारे पर्वत को, अपने स्कंध से उतारे गरुड़ जी, उतार करके रखे। इसके बाद भगवान ने गरुड़ जी को संकेत किया, ठीक है तब आप जाइए यहां से। तो गरुड़ जी वहां रहते तो वासुकी जी नहीं आ सकते थे, गरुड़ जी सर्पों के बैरी हैं, अगर वासुकी वहां आते तो उनको पकड़ करके खा जाते गरुड़ जी। तो कुछ देर हुई तो गरुड़ जी अब जाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम भी ये उत्सव देखें कैसे मंथन होता है। तो भगवान ने संकेत किया, नहीं आप जाइए भगवान के संकेत करते ही गरुड़ जी समझ गए कि क्यों भेज रहे हैं, आप यहां से जाइए, अब वासुकी जी को आने दीजिए। तो गलरी चले गए, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके और गलरी चले गए। जलांते उत्सृज्य हरिणा सविसर्जित, भगवान के द्वारा विसर्जित, भगवान ने कहा, उनको विदा दिया कि आप जाइए, आप यहां से हटिए, बासुकी को आने दीजिए। देखिए ये भगवान की लीला है। हमने यहां थोड़ी सी कथा कहा जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, लेकिन यह थोड़े ही श्लोकों में कही गई लीला कितनी महत्वपूर्ण है। कैसे संधि करना, कैसे मिलाना, कैसे अमृत उत्पन्न करने का प्रस्ताव देना, भगवान कैसे सिखाए अपने भक्त को, इंद्रदेव को, कि ऐसे जाओ, ऐसे बात करो, ऐसे करो, और संधि हो गई। संधि हो गई तो इसके बाद ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आज के युग में अगर ऐसी घटना कहीं हो जाए तो फिर कोई नाम लेगा कि हम ये करें वो करें, बस अपना अपना देखेगा, भागे छोड़ो अमृत पीना और ये सब। लेकिन फिर भी वो काम हुआ, भगवान फिर सबको जिला दिए, सबको ठीक कर दिए और मंदराचल पर्वत को पहुंचवा दिए, सब काम कम्प्लीट हो गया। और मंथन भी होगा। देवताओं के विषय में कवि ने कहा है कि मंदराचल पर्वत लाने में देवता मर गए तो फिर भी जिए, तो पर्वत को जब ले जाएंगे, मंथन चालू करेंगे तो पहाड़ पर्वत डूब जाएगा समुद्र में, उसके बाद फिर भगवान कच्छप बन करके उसको ऊपर किए, देवता फिर मथने के लिए तैयार हुए, मथने लगे तब हलाहल जहर निकल गया, उसको छोड़ करके भागे, लेकिन शिव जी जहर पी गए तो फिर उत्साह बढ़ गया, तो फिर उत्साह बढ़ गया, चालू हुआ तो अमृत तो बहुत बाद में निकला, बीच बीच में ऐसे ऐसे आकर्षक वस्तुएं निकली जिनको देख करके कोई भी आदमी लोभ में पड़ता, कहता कि अब क्या उतना मेहनत करना है, अमृत उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, अब ये मिल ही गया, रत्न मिल गया, ये सब मिल गया, छोड़ो। लेकिन देवताओं को उन वस्तुओं से भी संतोष नहीं हुआ, मेहनत करते ही गए, करते ही गए, जब तक अमृत नहीं निकाल लिए तब तक विश्राम नहीं किए। तो ये धीर पुरुषों का लक्षण है, वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही विश्राम करते हैं। इतना मेहनत, इतनी बाधा के बाद भी देवता अमृत मथे और अमृत पी करके ही दम लिए। तो जो व्यक्ति लक्ष्य को अस्थिर रखता है, घबराता नहीं है, धैर्यवान होता है, तो उसको फल मिलता है। देवता लोग अपना लक्ष्य पूरा करके ही छोड़े, अंत में अमृत पी ही गए, पी ही लिए। पर अमृत पीने में कितना मेहनत, कितना ये सब करना पड़ा। भगवान सब समय साथ है, किसी के भी, जो देवताओं के लिए सत्य है वो सबके लिए सत्य है। आज भी भगवान है, वैसे ही है, वैसे ही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हमारी इच्छाओं को समझते हैं और हमारे मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। और भगवान सब कुछ करते हैं, इस तरह से शरीर को ठीक कर देना, रोग दूर करना, कटा छटा ठीक कर देना, जिला देना, ये सब बिल्कुल भगवान के लिए स्वाभाविक है। परंतु मनुष्यों में बहुत बड़ी कमजोरी है कि भगवान की इन बातों को सुनकर कभी वास्तव में विश्वास नहीं करता है मनुष्य। कोई कोई भक्त है जो सहज हृदय से मान लेते हैं सब भगवान की लीला, और भगवान है नित्य और वैसे ही दयालु हैं। इस तरह से भगवान की लीलाओं को सुन करके अपने भीतर भगवान के प्रति सहज विश्वास और प्रेम भरना चाहिए। भगवान अपने सबसे निकटतम है, क्या कोई विपत्ति में सहायता करेगा। जो प्रभु ने किया देवताओं का और दैत्यों का सहायता, क्या कोई करेगा। इतनी दुर्घटना में कोई मर गया, किसी के हाथ कट गए, और कोई क्या करेगा। यदि मान लीजिए ज्यादातर हॉस्पिटल में आदमी ले जाता है, दवाई कराता है, लेकिन घाव कटा छटा शरीर नहीं भर पाता है पूरा, वो निराशा छाई रहती है। भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान सब ठीक करते हैं, एक पैसे की दवाई नहीं लगी, कोई डॉक्टर नहीं आया उस दुर्घटना में, है ना। मंदराचल गिरा तो छपा तो होगा अखबारों में बाद में कि ये घटना हुई, भगवान की कीर्ति तीनों जगत में फैलती है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, ऐसे ऐसे जिला दिया, ऐसे सब ठीक कर दिया, ये किया। इन्हीं लीलाओं को हमें रात दिन सोचना चाहिए, सोचना चाहिए इन्हीं को, और पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। कल समुद्र मंथन चालू किया जाएगा। जय श्रील प्रभुपाद।